नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप सानू शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। G7 नेताओं ने वैश्विक स्थिरता, सुरक्षा सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध का मुकाबला करने के प्रयासों पर केंद्रित कई घोषणाओं को अपनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के एवियन में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। श्री मोदी आज शाम पेरिस पहुंचेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सर्जिकल स्ट्राइक बालाकोट और ऑपरेशन सिंदूर का उदाहरण देते हुए कहा, भारत की संप्रभुता से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। वित्तीय वर्ष 2025-26 में भारत का रक्षा उत्पादन रिकॉर्ड 1,78,000 करोड़ रूपये पहुंचा, 2020-21 की तुलना में 110% की वृद्धि। सुरक्षा बलों ने मणिपुर में प्रवतन और आतंकवाद रोधी अभियान तेज किया, 3 आतंकवादी गिरफ्तार, 26 अवैध बंकर नष्ट। अब समाचार विस्तार से। G7 नेताओं ने वैश्विक स्थिरता, सुरक्षा सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध से निपटने के प्रयासों पर केंद्रित कई घोषणाओं को अपनाया है। अपने बयान में नेताओं ने अमरीका और ईरान के बीच एक शांति समझौते का स्वागत किया और इसे क्षेत्रीय तनाव कम करने तथा ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने का एक महत्वपूर्ण अवसर बताया। G7 नेताओं ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित नौवहन गतिविधियों के महत्व का भी उल्लेख किया। एक अन्य घोषणा में G7 नेताओं ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई तेज करने का संकल्प लिया और इसे राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिरता के लिए बढ़ता खतरा बताया। सहयोग देशों ब्राजील और दक्षिण कोरिया ने भी इस पहल का समर्थन किया है। नेताओं ने ज्ञान कौशल को बढ़ाने और तस्करी को रोकने के लिए G7 प्लस पोस्ट नेटवर्क का प्रस्ताव भी रखा। G7 देशों के नेताओं ने विकासशील देशों पर बढ़ती कर्ज के बोझ से निपटने की कोशिश तेज करने का संकल्प लिया है। इसमें वे कमजोर मध्य आय वाले देश भी शामिल हैं जो अभी भी कोरोना महामारी के दौरान G20 के कर्ज राहत ढांचे से के लिए योग्य नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस के एवियन में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। इससे पहले दोनों नेताओं ने फरवरी 2025 में अमरीका के वाशिंगटन में बैठक की थी। इस दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों सहित क्षेत्रीय और वैश्विक हित के मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। श्री मोदी सम्मेलन के दौरान सभी के लाभ के लिए संतुलित, समावेशी और मजबूत आर्थिक विकास को बढ़ावा देने पर सत्र में भी भाग लेंगे। श्री मोदी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सुरक्षित, तेज और प्रभावी इस्तेमाल को सुनिश्चित करने पर आयोजित एक विशेष सत्र में भी भाग लेने का कार्यक्रम है। इसके अलावा प्रधानमंत्री यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेन और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्टज से भी मुलाकात करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री आज शाम फ्रांस की राजधानी पेरिस पहुंचेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारतीय समुदाय के लोग प्रधानमंत्री मोदी के आगमन की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति से लेकर सर्जिकल स्ट्राइक बालाकोट और ऑपरेशन सिंदूर जैसे निर्णायक कार्रवाई तक भारत ने स्पष्ट संदेश दिया है कि उसकी संप्रभुता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में भारत ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा संरचना में ऐतिहासिक परिवर्तन देखा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में भारत का वार्षिक रक्षा उत्पादन अब तक के उच्चतम स्तर 1,78,000 करोड़ रूपये पर पहुंच गया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि यह उपलब्धि पिछले वित्तीय वर्ष के 1,54,000 करोड़ रूपये के उत्पादन की तुलना में 15% से अधिक की प्रभावशाली वृद्धि है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में इसमें 110% की वृद्धि हुई है, जब यह आंकड़ा 84,000 करोड़ रूपये से अधिक था। श्री सिंह ने कहा कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन वित्तीय वर्ष 2013-14 के 4,746 करोड़ रूपये की तुलना में 4 गुना बढ़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले एक दशक में भारत की रक्षा क्षमता में आत्मनिर्भरता और नवाचार, तकनीक और स्वदेशी निर्माण की सहायता से महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है। मायगांव की एक पोस्ट में अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कैसे भारत ने जल, थल और आकाश में उन्नत स्वदेशी तकनीकों के बल पर अपनी रक्षा क्षमता को मजबूत किया है। उन्होंने कहा कि इससे पिछले 12 वर्ष में भारत के रक्षा क्षेत्र में हुए बदलाव की झलक स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत एक प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरा है। अब भारत दुनिया का छठा सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक निर्यातक देश है। पुणे में एक अमरीकी कंपनी की विनिर्माण इकाई के उद्घाटन समारोह में श्री वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत एक वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण केंद्र के रूप में विकसित हुआ है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष अभिषेक देव ने बताया कि भारत का कृषि संबंधित खाद्य उत्पादों से जुड़ा निर्यात बढ़कर 500 उत्पादों तक पहुंच गया है। भारत ने यह उपलब्धि अमेरिका, ब्राजील, चीन और यूरोपीय संघ जैसे प्रमुख वैश्विक निर्यातकों से प्रतिस्पर्धा के बावजूद हासिल किया है। श्री देव ने कहा कि पिछले वर्ष कृषि निर्यात 53 अरब डॉलर मूल्य का था। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि बंजर भूमि को दोबारा उपजाऊ बनाने की सरकार की कोशिश न सिर्फ प्रकृति की सेवा है बल्कि मानवता के भविष्य को सुरक्षित करने का संकल्प है। नई दिल्ली में मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने के लिए वैश्विक दिवस के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में श्री यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2,60,00,000 हेक्टेयर भूमि को उपजाऊ बनाने का लक्ष्य रखा है। मणिपुर में सुरक्षा बलों ने राज्य भर में उग्रवाद विरोधी अभियान तेज कर दिया है। अधिकारियों के अनुसार अलग अलग अभियानों में 3 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया गया और 26 अवैध बंकर नष्ट किए गए। गिरफ्तार किए गए उग्रवादियों की पहचान प्रतिबंधित पीपल्स लिबरेशन आर्मी और उसके राजनीतिक विंग्स रेवोल्यूशनरी पीपल फ्रंट के सक्रिय सदस्य के रूप में हुई है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने आगामी नीट परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों से घोटालेबाजों से सावधान रहने का अनुरोध किया है। एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा है कि हम यह सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षा बिना किसी गड़बड़ी के संपन्न हो। इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र दिखाने पर राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों के किराए में 50% की छूट दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने आज लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर नीट पुनः परीक्षा से पहले छात्रों के मन में तनाव पैदा करने और उनकी एकाग्रता भंग करने का आरोप लगाया है। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि सरकार इस परीक्षा को पूरी संवेदनशीलता और सतर्कता के साथ व्यवस्थित तरीके से आयोजित करने जा रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल की हिजबुल्ला पर सैन्य कार्रवाई की निंदा की है। फ्रांस में जारी G7 सम्मेलन के दौरान ट्रंप ने कहा कि यह संघर्ष बहुत लंबे समय से जारी है और इसमें कई लोगों की जान गई है। उन्होंने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से सैन्य कार्रवाई के संचालन में अधिक जिम्मेदारी बरतने का आग्रह किया है। इस बीच ब्रेंट क्रूड की कीमत 5.4% गिरकर 78.66 डॉलर हो गई है। आईसीसी महिला T20 विश्व कप क्रिकेट में आज भारत का सामना नीदरलैंड से होगा। यह मैच ब्रिटेन में लीड्स में भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे शुरू होगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप में ऑस्ट्रिया ने जॉर्डन को 3-1 से हराया। अर्जेंटीना ने आज सुबह अल्जीरिया को 3-0 से पराजित किया। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 4-5 दिनों में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना है। विभाग ने आज उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।